त्वया बिना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणांतिके। मैं सबसे प्रथम अपने परमाराध्य नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपास श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम गोपीनाथ जी के दर्शन के लिए आए हैं। मैं लगभग 50-60 वर्षों से मैं यहाँ आता हूँ। पहले तो यहाँ एक एक महीने में भी ठहरा हूँ। सब समय गोपीनाथ गोविंद जी, राधा दामोदर, राधा माधव, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि सबका यहाँ हमने दर्शन किया, किंतु कभी प्रवचन करने के लिए नहीं आया। अभी यहाँ के जयपुर के भक्तों ने हमें आग्रह किया कि आप 5-6 दिन वहाँ पर प्रवचन दें। मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मुझे गोविंद जी के, गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए मिलेंगे और प्रचार प्रवचन के द्वारा राधा कृष्ण का गुणगान करूँगा, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ। आज बिजली न होने के वजह से कुछ असुविधा हुई। ठीक समय पर हम अपना प्रवचन आरंभ नहीं कर सके, इससे कुछ विलंब हो गया। कल से हम लोग ठीक समय पर हम लोग प्रवचन आरंभ करेंगे। आज आपके संबंध में आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूँ, जिनका दर्शन कर रहे हैं वो गोपीनाथ हैं कौन? दर्शन तो करते हैं किंतु जब तक उनका तत्व नहीं मालूम हो जाए ये हैं कौन, तब उनमें प्रीति नहीं अधिक हो सकती। उनको गणेश दुर्गा काली के समान ही एक देवता समझेंगे और उनसे वही मांगे जो गणेश से, शंकर जी से, इंद्र से, कुबेर से जो मांगते हैं वही इनसे मांगेंगे। आप ठग जाएंगे, इसलिए इनका तत्व पहले समझना चाहिए। ये वृंदावन में यशोदा मैया के गर्भ से प्रकट भय, मथुरा में जो प्रकट हुए वो वासुदेव नंदन, वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नारायण के रूप में आए, अधिक कुछ नहीं। वो गोपीनाथ जी से अलग हैं, वो गोपीनाथ जी से निकले हैं। गोपीनाथ तो ब्रजेंद्रनंदन हैं, श्याम सुंदर हैं, कुछ और अधिक हैं। यशोदा मैया के गर्भ में आकर उन्होंने सबसे पहले प्रकट होकर के पूतना राक्षसी का वध किया, जो अपवित्रता है। पूत ना पवित्र नहीं, और पुत माने पुत्र, पुत्र भी नहीं। वो तो बालकों का मांस खाने वाली, रक्तपान करने वाली, बड़ी दुराचारिणी असुर थी। किंतु कृष्ण कैसे दयालु कि वो वेश बना करके माता का आई और कृष्ण को अपने स्तन का दूध पिलाने का बहाना बनाकर उसे विष पान कराया, और कृष्ण ऐसे जो उसको धात्री उचित गति, माता जैसी गति उसको गोलोक में सदा के लिए दे दिया। ऐसा दयालु को छोड़कर के कौन किसका भजन करेगा? और लोग ये नहीं दे सकते, कोई भी भगवान के अवतार हैं नहीं दे सकते जो कृष्ण दे सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने तृणावर्त का वध किया, शक्तासुर का वध किया, उनका भी उद्धार किया। पुनः दामोदर लीला में जो यशोदा मैया के लाड प्यार से दामोदर की लीला, यशोदा मैया ने उनके कमर में रस्सी बांधी, रस्सी नहीं प्रेम से उनको बांध दिया। यशोदा जी के अतिरिक्त कौशल्या जी राम को नहीं बांध सकती, नारायण को कोई नहीं बांध सकता, द्वारकाधीश को भी कोई नहीं बांध सकता है, और यशोदा मैया अपनी गोदी में नहीं लेती हैं, उसे शासन करती हैं, तुझे गोदी में नहीं लेंगी, क्यों? तुम बड़े नटखट हो, तुम चोर हो, धूर्त हो इत्यादि कहती हैं। यशोदा के अतिरिक्त ऐसा कौन कह सकता है? यशोदा के लठिया के डर से उनके आंखों में आंसू आते हैं, वो रोते हैं सचमुच में। इस तरह से उन्होंने लीलाएं की। इसके बाद में ब्रज में आए, वृंदावन में, वहाँ पर और लीलाओं के साथ में अंत में उन्होंने रास लीला की। वो लीला ऐसी कि चंद्र न जाने कितने युगों तक एक स्थान में रहा उनकी लीला को देखने के लिए। अंत में उन्होंने कंस को मारने के लिए मथुरा में आए, कंस को भी मारा, फिर द्वारका आए, द्वारका से आकर के वहाँ पर उन्होंने शादियाँ की 16,108 महिषियों से। तत्पश्चात महाभारत युद्ध में असुर स्वभाव के लोगों को उन्होंने ध्वंस किया, और इस प्रकार से धर्म की प्रतिष्ठा की, गीता का ज्ञान सुनाया। इसके बाद में अपने लीला को संवरण कर लिया, गोलोक वृंदावन में पहुंच गए। तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी जी आए और वहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ की। इस तरह से भागवत के प्रवचन का रास्ता, मार्ग साफ उन्होंने किया। आज जो श्रीमद् भागवत ये सुन रहे हैं, ये भगवान का ही स्वरूप है, जो कृष्ण स्वयं नहीं दे सकते, अभी बतलाया, ये सुखदेव गोस्वामी जी दे सकते हैं, तो उन्होंने दिया। जब उनकी लीला समाप्त हो गई, उस समय में वज्रनाभ जी उनके वंश में थे, और इधर में पांडवों के वंश में परीक्षित महाराज जी रहे। परीक्षित महाराज जी बड़े थे और अपने बेटे की तरह इनको मानते थे, वज्रनाभ को। परीक्षित महाराज जी ने इनको द्वारका से लाकर मथुरा में उनका राज्याभिषेक कराया, और फिर शांडिल्य ऋषि के अनुगत्य में स्वयं ब्रज को प्रकाश करने के लिए आदेश दिया। 5,000 वर्षों के बाद में, कृष्ण जन्म के बाद में, वृंदावन वीरान हो गया था, कोई नहीं जानता था जय राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है। तो इस चीज को फिर से ब्रज को प्रकाश करने के लिए वज्रनाभ जी ने वृंदावन में गोविंद जी, गोपीनाथ और मदन मोहन की विग्रह स्थापित किया। सबसे पहले वहां पर उन्होंने गोपीश्वर महादेव की भी मूर्ति स्थापित की। इस तरह से गोवर्धन में उन्होंने हरिदेव जी को, जितने भी कृष्ण की लीला स्थलियां हैं वहां पर या तो कुंड बनाया या वहां पर मंदिर बनाए, चरण चिन्ह इत्यादि स्थापित की। इस प्रकार से सारे ब्रज को उन्होंने प्रकाश किया, किंतु उनके अप्रकट होने के बाद में फिर बहुत वर्षों के बाद में फिर वृंदावन वीरान हो गया। यवनों का उत्पात बढ़ने लगा और उनके उत्पात से पुजारी लोग ठाकुर जी को लेकर के गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन और दूसरे विग्रहों को कहीं छिपा करके कुंजों में रख दिया, कहीं इधर भाग गए, कहीं सरोवरों में डाल दिया। इस तरह से जब फिर वृंदावन वैसे ही वीरान हो गया तो चैतन्य महाप्रभु ब्रज में पधारे। ये महाप्रभु जी हैं कौन? स्वयं गोपीनाथ ही हैं, गोविंद जी ही हैं, कृष्ण ही हैं। विशेष कार्य से राधा जी का सौंदर्य और उनके भावों को लेकर इस जगत में कृष्ण प्रेम देने के लिए आए। कौन सा साधन करके हम कृष्ण को ब्रज में पा सकते हैं, इसके लिए स्वयं आए। इसके लिए अपने परिपर रूप गोस्वामी को भी अपने साथ ले आए, जिन्होंने बहुत से ग्रंथ इत्यादि लिखे। इसके बाद में हम लोग जान सकते हैं कि ये राधा गोपीनाथ जी, राधा गोविंद जी हैं कौन। ये गोपीनाथ जी के लिए कहे हैं, श्रीमान रास रसारंभी बंसी बट तटस्थित करसन बेन स्वनैर गोपी गोपीनाथ शेषतुना। हमारा कल्याण करे गोपीनाथ जी। कौन? वृंदावन के शरद पूर्णिमा में बंसी बजाई। किस लिए बंसी बजाई? गोपियों के लिए बंसी बजाई। उनकी इच्छा हुई कि मैं रास विलास करूं। कृष्ण वैसे तो उनके अतिरिक्त और कुछ है नहीं, आत्मा राम और आत्मा आप तो काम दोनों हैं। ऐसी कोई उनकी इच्छा नहीं है जो पूर्ण न हो, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उनकी कोई इच्छा ही नहीं है, किंतु जसोदा मैया को खिलाने की इच्छा होती है तो वो भूख लग जाती है। जब कृष्ण दुर्योधन की राजसभा में पहुँचे और युद्ध बंद हो इसके लिए प्रयास करने के लिए गए, उस समय दुर्योधन ने इनका बड़ा सम्मान किया। दुशासन के स्वर्ण के महल में इनको ठहराया, मेवे मिश्री इत्यादि सब उनके सामने उपस्थित किए खिलाने के लिए। किंतु कृष्ण ने क्या कहा? देखो भैया, पहले तो मुझे भूख नहीं, इसलिए मैं नहीं खा सकता। दूसरी बात, जिस काम के लिए माया आया, युद्ध में संधि हो जानी चाहिए, वो तो हुई नहीं, आपने मेरी बात नहीं माना, इसलिए जब मेरा काम नहीं हुआ तो मैं खा नहीं सकता। तीसरी बात, यदि भूख नहीं रहती है, प्रेम रहता है तो आदमी खा लेता है, तो तुम्हारे अंदर में प्रेम भी नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर में नहीं खा सकता। किंतु जब वहाँ से निकले हैं, विदुर के घर में गए, विदुरानी तो थी, विदुर तो थे नहीं, विदुरानी थी, वो युद्ध से पहले ही निकल गए थे दुर्योधन के अपमान करने से। वो समझ गए थे कि इन वंश का ध्वंस होगा, केवल विदुरानी थी। विदुरानी प्रेम में पककर कृष्ण को बैठाया, कृष्ण को भूख लग गई और केले के छिलका खिलाने लगी और उसका सार भाग फेंकने लगी। कृष्ण बड़े प्रेम से मत्त होकर के आरोग रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या, रुक्मिणी सत्यभामा और सारी रानियां मिलकर के जो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट अन्न बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, मुझको प्रिय नहीं लगती है, आज ये छील के मुझ जितने प्रिय। कृष्ण को प्रेम से मिलते हैं, उनको भूख तो नहीं, जहाँ प्रेम मिला वहीं पर उनको भूख लग जाती है। तो इसलिए प्रेम के भूखे हैं और किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं। तो ये कृष्णचंद्र जी वहाँ पर नहीं खाए और विदुरानी के केले के छिलके खाए। उसी तरह से ब्रज में एक ऐसी चीज़ है जो द्वारका में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, अयोध्या में नहीं है, द्वारावती में नहीं है, मथुरा में भी नहीं है। वो क्या चीज़ है? ब्रज के लोग उनको भगवान नहीं जानते, कोई भी। मथुरा में उनको भगवान समझते हैं, द्वारकापुरी में भी भगवान समझते हैं, मथुरा में जन्म ही लिया शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, किंतु ब्रज में कभी शंख चक्र गदा नहीं धारण किया। वो जो यशोदा मैया के बेटे हैं, लाडले बेटे हैं, सखाओं के अपने सखा हैं, जो जूठा खाते हैं उनको खिलाते हैं, कंधे पर चढ़ते हैं, कृष्ण के कंधे पर भी चढ़ते हैं, अरे तरे गाली देते हैं उनको, अपने बराबर समझते हैं, कहते हैं कि तुम हमसे बड़ा कैसा, तुम्हारे बाप को 9 लाख गाय हैं और हमारे बाप को 11 लाख गाय हैं। श्री राम जी ताल ठोक करके कृष्ण को चिढ़ाते हैं, ऐसा अयोध्या में नहीं हो सकता, वैकुंठ में कभी भी संभव नहीं है, इसलिए ब्रज में मर्यादा नहीं, भगवान का भाव नहीं, ये कृष्ण भगवान हैं। वहां पर कृष्ण भूल जाते हैं जो मैं भगवान हैं, और ब्रजवासी लोग कोई भी उनको भगवान नहीं समझता है, और ऐसी प्रेम की लीलाएं करते हैं जो सोदा मैया जी का तो सुना ही है, सखा लोग भी ऐसे, और उनसे बढ़कर के गोपियां कृष्ण को अपना केवल मात्र प्रियतम समझती हैं और कुछ नहीं समझती, और उनका पूजन और आराधना कैसे करती हैं, मान कर लेती हैं, और कृष्ण लाख हो करके मनाते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं, इसलिए सेवा कुंज है वृंदावन में। सेवा कुंज किस लिए नाम हुआ, यहाँ पर कृष्ण ही सेवा करते हैं, और जगहों में कृष्ण की सभी लोग सेवा करते हैं, किंतु ब्रज का ये स्थान या और भी भांडीर वन इत्यादि स्थान है, राधा कुंड है, जहाँ पर कृष्ण अपनी मुरली, अपना ये मकुट, मोर मकुट सब राधा जी के चरणों में न्योछावर करते हैं, और कहते हैं मैं तुम्हारा ऋण नहीं शोधन कर सकता, आप अपने खुद ही प्रसन्न हो जाइए। ऐसा और जगह कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यहाँ तक कि राधा जी के चरणों की महावर अपने सिर पर अंकित करके स्टाम्प लेते हैं कि मैं राधा जी की दासी हूँ, मैं दास हूँ। क्यों, यदि गोपियाँ न रहें तो गोपीनाथ कैसे हो जाएंगे, हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, इसलिए श्रीमान रास रसारंभी बंसी बट तटस्थ स्थित, वृंदावन का बंसी बट, जहाँ पर शंकर जी गोपी गोपीश्वर महादेव के रूप में उनकी आराधना करते हैं, वृंदावन में पधारे, वृंदावन की सीमा पर गोपियों ने उन्हें रोक दिया, प्रवेश नहीं कर सकते, शंकर जैसे लोग रोक दिया, उनका बैल नहीं घुस सका वृंदावन में, उनका डमरू और मृग छाला भी रह गया, गोपियों के चरणों में गिड़गिड़ाने लगे, गोपियों ने कहा आप जोग माया जी की आराधना करें, बहुत वर्षों तक जोग माया की आराधना की, जोग माया वहां उनके सामने प्रकट हुई, क्या चाहते हो, शंकर जी ने कहा मैं वृंदावन में प्रवेश करके रास दर्शन करना चाहता हूं कृष्ण का, तो इस रूप में नहीं देख सकते, तो आप ऐसी कृपा करें जो मैं उनका दर्शन कर सकूं। ठीक है, उनको पकड़ा और पकड़ करके वहीं पर ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड में लेकर के उनको डुबो दिया, जहां रंग जी का मंदिर है उसी के पास में ब्रह्म कुंड है, अब तो लुप्त तो हो चला है, उसमें लेकर के डुबा दिया और निकाला तो गोपी बन गए, कहते जाओ यहीं ठहरो और यहीं से रास देखना, चली गई, अब ये गोपी तो बन गए, और कुंज में बैठ करके ईशान कोण में जहाँ वो बंशी बैठ है उसके ईशान कोण में बैठ करके गोपी बन करके देखने लगी, अब रास होगी, कृष्ण ने मधुर तान बजाई और रास आरंभ होने वाला था, किंतु आज किसी का मन नहीं रास में लग लेने का, जे आज कोई मालूम होता है कोई विजातीय कोई व्यक्ति इसमें घुसा है जिसका अधिकार नहीं है, कृष्ण भी खोजने लगे, गोपियां भी ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते देखा ईशान कोण में एक कुंज के भीतर में एक नवेली गोपी वहां पर बैठी हुई है, गोपियों ने उसे पकड़ा, अरे तेरा नाम क्या है, जोगमाया ने नाम तो बतलाया नहीं, अरे तेरे खसम का नाम क्या है, तो उन्होंने कुछ बोल नहीं सके, अरे तू कौन गांव की है, तुम्हारा बाप कौन है ये भी नहीं बतलाया, अरे तुम्हारी शादी कहाँ हुई है वो भी नहीं बतलाया, जब नहीं बतला सके डर गए तो गोपियों ने गुलचे मार करके उनके गालों को फुला दिया, शंकर रोने लगे, उस समय में पूर्णिमा जी का स्मरण किया, पूर्णिमा जी वहाँ पर आई और कृष्ण से और गोपियों से निवेदन किया, हमने इसको वर दिया था इसलिए यहाँ से देख रही थी, आप लोग कृपा करें जो यहाँ पर स्थान हो यहाँ से देख सके और इसको ये भावना मिल जाए। तब कृष्ण ने और गोपियों ने उनको आशीर्वाद दिया। गोपीश्वर माने क्या? गोपियाँ जिनकी ईश्वर हैं, गोपियों के ईश्वर है ऐसा नहीं, जैसे रामेश्वर राम जस ईश्वर जिसके ईश्वर हैं, ऐसे यहाँ पर होगा क्या? गोपियाँ ही जिनकी ईश्वरी हैं, आराधना करने के लिए वहाँ पर आए हैं। तो कृष्ण और गोपियों ने, राधा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, तुम यहीं रहो और वृंदावन में जो प्रवेश करे उसको तुम अधिकार देना जब वृंदावन में प्रवेश कर सके और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। तब से वे हुए इस प्रकार से, उनको योग्यता आई। वृंदावनावनी पते जय सोम सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारदेड्य गोपीश्वर युगांघ्रि पद्मे प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। हे गोपीश्वर महादेव, आप दया कीजिए जब वृंदावन में प्रवेश हो और राधा कृष्ण जुगल की हम सेवा में लग सके, राधा गोपीनाथ जी की सेवा में हम प्रवेश कर सके। तो ऐसे शंकर जी की अवस्था, ब्रह्मा जी का प्रवेश नहीं, ये लोग समाधि में भी उनके चरणों को दर्शन नहीं कर सकते, किंतु गोपियां कैसी हैं, विशेष करके राधा, उनकी चरण की धूलि को यदि मनी मन में ध्यान करें तो कृष्ण अपने आप वशीभूत हो जाते हैं। ये हैं गोपीनाथ जी। रास रसारंभी बंसी बट तटस्थ, बंसी वन में, बंसी बट के छत्र छाया में कोटि कोटि गोपियों को लेकर के वहाँ पर रास कर रहे थे और रास करते करते राधा जी को कुछ अभिमान हो गया, ये गोपियाँ और मैं एक ही समान हूँ, जो हमारे साथ में नित्य कर रहे हैं इनके साथ में, तो उनको मान हो गया और उस समय में राधा जी रास छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गईं। कृष्ण ने देखा सत कोटि गोपी कृष्ण के चित्त को हरण नहीं कर सकी। कृष्ण देखे राधा जी किधर गई, राधा जी किधर गई। भागवत में स्पष्ट नहीं लिखा किंतु यही भाव है। पहले कृष्ण अंतर्ध्यान नहीं हुए, हुआ कौन? राधा जी को मान में होने से उन्होंने वो रास अंतर्ध्यान हो गई और कृष्ण उनको ढूंढते राधे 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 करते हुए उनके पीछे पीछे चले। फिर वो मिले गोपियों को, इस सब का वर्णन है वहाँ श्रीमद् भागवत में, अधिक इस विषय में मैं नहीं जाना चाहता। तो राष्ट्रसारंभी बंसी बट तटस्थ कर्षन बेन स्वनैर गोपी गोपीनाथ, उन्होंने बंसी बजाई ने? उस समय के लिए कहते हैं कि जब रासलीला समाप्त हुई, बज्रनाथ जी ने वहीं पर गोपीनाथ जी की प्रतिष्ठा की। कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के करीब करीब 130 वर्ष बाद में गोपीनाथ जी की और गोविंद जी की और मदन मोहन जी, गोपीनाथ की प्रतिष्ठा कहाँ की? बंसी तट पर गंगा के किनारे। 5000 वर्षों के बाद में जब चैतन्य महापुरुष ब्रज में आए और उसके बाद में रूप सनातन को भेजा, तो गदाधर पंडित जी के ही एक परिवार में मधु पंडित जी थे, वो वृंदावन में आए। वो रोज प्रतिदिन परिक्रमा के लिए पंचक्रोशी जाते थे और जमुना जी में खूब सवेरे में स्नान करते, ब्रह्म मुहूर्त में उनका ये नियम था। एक दिन स्नान कर रहे थे, उनके एक गुरु भाई भी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो भी, दोनों ने देखा जमुना का किनारा कट रहा है और जो बंसी बट था प्राचीन वो गिर गया जमुना जी के प्रवाह में और वहीं पर सुंदर श्याम सुंदर ये चिक्कन ये गोपीनाथ जी उसी में अंदर से निकले। दोनों ने उनको धोया जमुना जी में और धो करके दोनों ले आए जमुना के तट पर और वहीं पर एक बट वृक्ष और लगाया। अब वो पुराना नहीं, अब उसी के पास में, अभी जो बंसी बट देखते हैं उसी के पास में और वहीं पर रख करके और वहीं पर उन्होंने छोटा सा एक मंदिर सा कुंज सा बनाया और वहीं पर ये गोपीनाथ जी को रखा। बहुत दिनों तक रहे, बाढ़ में वो भी फिर गिर गया तो उसको अब 20 साल में राधा रमन जी के पास में गोपीनाथ जी को ले आए हैं। अब वहाँ पर उनका दर्शन है गोपीनाथ जी का। अब वो बंसी बटवाले तो फिर वो गिर पड़ा, इसलिए यहाँ ले आए। तो यहाँ पर वो थे, किंतु थे कौन? बज्रनाथ जी ने उस समय में पूरी तरह से गोविंद जी के मंदिर पर आक्रमण किया, उसके भी बहुत से तल्ले ऊपर के थे, उसको तोड़ दिया, केवल ये थोड़े से भाग रख दिए जो अभी बचा हुआ है। अब तो उसकी सुरक्षा कुछ लोगों ने की, और मंदिर से गोपीनाथ जी कहाँ चले गए? गोविंद जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन, श्याम सुंदर, राधा माधव, राधा दामोदर, राधा गोकुलानंद, राधा विनोद, ये सब कहाँ आए? उन्होंने भक्त राजा था यहाँ का जयपुर का, अभी उनका देखो अभी मूर्ति भी लगी हुई है, वो बड़े भक्त थे, उनको स्वप्न दिया और वृंदावन में वे पहुँचे। एक एक रथ पर एक एक विग्रहों को लिया, गोविंद जी का एक, गोपीनाथ जी का एक, मदन मोहन जी का एक, राधा माधव जी का एक, इसी तरह से सब विग्रहों को, राधा दामोदर इत्यादि को ले आए। और ले करके पहले पहला पड़ाव था काम्यवन में, वही काम्यवन में रहे और वहाँ पर अलग अलग जगहों में उनको रखा और एक दो दिन रह करके विश्राम करके फिर वहाँ से चले। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन को यहाँ ले आए और गोपाल जी को, जो गोवर्धन में गोपाल जो थे, उनको कहाँ ले गए?
नाथद्वार
उदयपुर के समीप में, जंगलों में, झाड़ियों में, पहाड़ियों में, जैसा गोवर्धन है उसमें वहाँ चले गए। गोपीनाथ गोविंद जी तो वहाँ रहे जहाँ भी हैं राजभवन में, और गोपीनाथ जी को यहाँ पर पधराया गया। और मदन मोहन जी, राजा की लड़की बड़ी भक्त थी, राजा से प्रार्थना की अपने बाप से मैया से, हमको और कुछ नहीं चाहिए दहेज में, हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस ये हमको मदन मोहन की मूर्ति हमको दे दो। तो मदन मोहन की वो लेकर के चली गई करौली में, आज करौली में वो हैं। और ये दोनों विग्रह अभी भी यहीं पर हैं और इनकी राजकीय सेवा होती है। हम लोगों का सौभाग्य है जो उसी गोपीनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। किंतु ये समझिए ये गोपी जी नाथ जी कौन हैं, इसके संबंध में मैं कुछ कुछ कल बतलाऊंगा, आज यहीं तक रहे। गौर प्रेमानंदे, जय जय। कल हमने कथा प्रसंग में